एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, स्टीफन फाइनमैन की किताब वर्क।
बिल्कुल, काम। ये शब्द सुनते ही शायद दफ्तर, तनख्वाह, हाँ, डेडलाइन, ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं, है ना? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि काम तो बस पेट पालने का जरिया है।
हाँ, मतलब क्या ये सच में इतना ही है, या फिर ये हमारी पहचान, हमारी खुशी, हमारे दुख, हमारे रिश्तों को कहीं ज्यादा गहराई से छूता है?
यही सवाल फाइनमैन अपनी किताब में उठाते हैं। वो काम को सिर्फ एक आर्थिक नजरिए से नहीं देखते,
सही,
बल्कि इसके मानवीय और भावनात्मक पहलुओं को कुरेदते हैं। वो पहलू जिन्हें अक्सर हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या शायद जिन पर बात करने से थोड़ा कतराते हैं। हाँ, ये किताब हमें सोचने पे मजबूर करती है कि काम असल में हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है।
तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि स्टीफन फाइनमैन हैं कौन।
हाँ, ये जरूरी है।
स्टीफन फाइनमैन यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में संगठनात्मक व्यवहार यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के काफी जाने माने प्रोफेसर इमेरिटस हैं।
और उनका काम जो है वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मैनेजमेंट की दुनिया के बीच एक पुल जैसा बनाता है।
हाँ, और उनकी सबसे खास बात शायद ये है कि वो कंपनियों और संगठनों में भावनाओं के रोल पर रिसर्च करने वाले, मतलब शुरुआती विद्वानों में से हैं।
हाँ, देखिए, पारंपरिक मैनेजमेंट थ्योरी अक्सर ये मानती है कि काम की दुनिया एकदम तर्क और कुशलता, मतलब रैशनैलिटी और एफिशिएंसी से चलती है। भावनाओं की वहां कोई जगह नहीं,
जैसे मशीनें हों सब।
हाँ, लेकिन फाइनमैन कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। भावनाएं तो काम का एक अभिन्न हिस्सा है।
बिल्कुल, वो कोई बिजनेस गुरु नहीं है जो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की टिप्स दे,
नहीं,
बल्कि वो एक सामाजिक वैज्ञानिक है। दशकों के शोध और असली कंपनियों के साथ काम करने के अनुभव से हमें समझाते हैं कि ये काम नाम की जो व्यवस्था है ये कितनी जटिल और मानवीय है। वो इसकी परतें खोलते हैं एक तरह से।
तो किताब का मूल विचार क्या है, मतलब सार क्या है?
किताब का सार ये है कि काम सिर्फ पैसे कमाने का लेन देन नहीं है, ये एक बहुत पेचीदा, बहुआयामी और अक्सर विरोधाभासों से भरा मानवीय अनुभव है। ये हमारी पहचान बनाता है, हमारे शरीर पर असर डालता है, हमारे मन को प्रभावित करता है, और हाँ, हमारे सामाजिक रिश्तों को भी शक्ल देता है।
अच्छा,
दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनमैन उस आम धारणा को चुनौती दे रहे हैं जो काम को एक बिल्कुल तटस्थ, मतलब न्यूट्रल, मशीनी गतिविधि समझती है।
सही। किताब दिखाती है कि कैसे काम हमारे शरीर को थकाता है, कभी कभी चोटिल भी करता है, लेकिन साथ ही कैसे हमसे एक खास तरह का भावनात्मक श्रम या इमोशनल लेबर भी करवाता है।
और ये हमारी सेल्फ इमेज, मतलब अपनी पहचान की भावना को कैसे बनाता बिगाड़ता है।
हाँ, और इतना ही नहीं, ये काम की जगह पर मौजूद जो शक्ति का खेल है, पावर डायनामिक्स और असमानताएं, उन पर भी रोशनी डालती है,
खासकर लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव पर।
हाँ, और हाँ, ये काम के स्याह पक्ष यानी डार्क साइड को भी सामने लाती है, जैसे तनाव, बोरियत, दफ्तर में होने वाली बदमाशी, बुलिंग जिसे कहते हैं,
और कभी कभी वो एहसास कि काम एकदम अर्थहीन है, मतलब मीनिंगलेसनेस।
बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, फाइनमैन इस बात पर जोर देते हैं कि भावनाएं काम में कोई रुकावट नहीं है।
हाँ, बल्कि उसका जरूरी हिस्सा है। उन्हें दबाना या नजरअंदाज करना न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बुरा है। सही कहा। चलिए इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि काम का मतलब हमेशा से वो नहीं था जो आज हम समझते हैं, है ना?
हाँ, ये जानना तो बड़ा जरूरी है। इतिहास देखें तो प्राचीन ग्रीस और रोम में शारीरिक मेहनत को, मतलब, नीची नजर से देखा जाता था। ये दासों का काम मानते थे।
अच्छा,
फिर यहूदी ईसाई परंपरा में काम को सजा भी माना गया और अनुशासन का रास्ता भी।
और फिर आया वो मैक्स वेबर का मशहूर आइडिया, प्रोटेस्टेंट कार्य नीति,
प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक।
हाँ, इसने काम को एक नैतिक कर्तव्य बना दिया, मेहनत को इज्जत दी, और इसने कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद की नींव रखी।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, वो कार्ल मार्क्स ने दिखाया, अलगाव,
एलियनेशन।
वो कैसे?
कैसे फैक्ट्री का मजदूर अपने काम से कट जाता है, अपनी बनाई चीज से, यहाँ तक कि अपनी क्रिएटिविटी से, खुद से और अपने साथियों से भी कटा हुआ महसूस करता है।
ओह, तो मतलब आज हम इसी विरोधाभास में जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काम हमारी पहचान भी बनाता है जैसा वेबर ने कहा,
और हमें तोड़ता भी है जैसा मार्क्स ने कहा।
सही, फाइनमैन हमें इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ देखने में मदद करते हैं, और ये समझना जरूरी है कि काम को अपनी पहचान का केंद्र बना लेना, ये सोच भी ऐतिहासिक रूप से मतलब काफी नई है।
अब आते हैं शरीर और मन पर। फाइनमैन कहते हैं कि पारंपरिक मैनेजमेंट सोच अक्सर ये भूल जाती है कि काम सिर्फ दिमाग से नहीं होता,
शरीर से भी होता है।
हाँ, शारीरिक असर तो साफ दिखते हैं, थकान, चोटें, या फिर कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे कलाई या गर्दन में दर्द, रेपिटेटिव स्ट्रेन जिसे कहते हैं।
हाँ ये तो है, लेकिन नियंत्रण और भी मतलब महीन तरीकों से होता है ना।
बिल्कुल, जैसे कि ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, चेहरे पर कैसे भाव रखने हैं।
और यहीं पर आता है वो भावनात्मक श्रम का कॉन्सेप्ट, इमोशनल लेबर, जिसे समाजशास्त्री आर्ली हॉक्सचाइल्ड ने समझाया था।
हाँ, इसका मतलब है अपनी असली भावनाओं को दबाकर नौकरी की जरूरत के हिसाब से भावनाएं जताना।
सोचिए उस एयर होस्टेस या कॉल सेंटर कर्मचारी के बारे में जिसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता है, मददगार दिखना पड़ता है, चाहे अंदर से वो कैसा भी महसूस कर रही हो।
हाँ बिल्कुल, यहाँ शरीर और भावनाएं जैसे कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं, उसकी छवि बनाने के काम आते हैं।
और मानसिक रूप से हम अक्सर काम से अपनी पहचान जोड़ते हैं। कोई पूछता है आप क्या करते हैं तो हम अपना जॉब टाइटल बताते हैं।
हाँ ये तो है, लेकिन यही पहचान नौकरी जाने पर गहरे संकट का कारण बन सकती है।
और तनाव, काम का बोझ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बर्नआउट, ये सब भी तो काम की ही देन हो सकते हैं कई बार।
एक और दिलचस्प चीज है मनोवैज्ञानिक अनुबंध,
साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट।
वो क्या है?
ये कर्मचारी और कंपनी के बीच का एक अनकहा समझौता है, कुछ उम्मीदें जो लिखी नहीं होती पर समझी जाती हैं।
जैसे? जैसे अगर मैं वफादारी से काम करूंगा तो कंपनी मेरी नौकरी सुरक्षित रखेगी या मुझे तरक्की देगी, इस तरह की चीजें।
अच्छा, और जब ये उम्मीदें टूटती हैं
तो गहरा धक्का लगता है, विश्वासघात महसूस होता है। और दफ्तर की पॉलिटिक्स, जलन, दोस्ती, निराशा, खुशी, ये सब भावनाएं भी तो काम का हिस्सा हैं।
बिल्कुल, फाइनमैन कहते हैं कि इस भावनात्मक सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है, इसे दफ्तर के दरवाजे पर छोड़कर आने को कहना तो मतलब अमानवीय है।
हाँ, अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं, काम और लिंग, जेंडर। फाइनमैन साफ दिखाते हैं कि काम की दुनिया लिंग के आधार पर कैसे बटी हुई है।
हाँ, ये तो बहुत साफ दिखता है।
पारंपरिक रूप से देखें तो पुरुषों के लिए बाहर का काम पैसे वाला, और महिलाओं के लिए घर का काम बिना पैसे वाला।
और इसकी छाप आज भी है।
इसके कई पहलू हैं। एक है व्यावसायिक अलगाव, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, मतलब कुछ काम ज्यादातर पुरुष करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन,
और कुछ ज्यादातर महिलाएं करती हैं, जैसे नर्सिंग, टीचिंग, देखभाल वाले काम।
हाँ, और अक्सर महिलाओं वाले कामों को कम महत्वपूर्ण माना जाता है और उनमें तनख्वाहें भी कम होती है, भले ही उनमें उतना ही हुनर क्यों न लगता हो।
फिर आती है वो ग्लास सीलिंग वाली बात, ग्लास सीलिंग, वो अनदेखी दीवार जो महिलाओं और दूसरे वंचित समूहों को टॉप पोजिशन तक पहुँचने से रोकती है।
और जेंडर पे गैप तो है ही, जेंडर पे गैप, पुरुषों और महिलाओं की औसत कमाई में अंतर।
हाँ ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है।
और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है अवैतनिक श्रम, अनपेड लेबर, घर का काम, बच्चों बूढ़ों की देखभाल, जिसका ज्यादातर बोझ आज भी महिलाओं पर है।
हमारी अर्थव्यवस्था तो इसे काम गिनती ही नहीं है, इसका कोई मोल नहीं लगाती।
लेकिन फाइनमैन जोर देते हैं कि ये समाज और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। मतलब लिंग सिर्फ एक व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि काम की दुनिया को संगठित करने वाला एक ढांचा है जो असमानता पैदा करता है।
भारत में तो हम ये रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही हैं।
बिल्कुल, अब बात करते हैं काम के स्याह पक्ष की, डार्क साइड।
हाँ, फाइनमैन कहते हैं कि दफ्तर की मुश्किलें सिर्फ कुछ बुरे बॉस की वजह से नहीं होती, अक्सर ये उस सिस्टम का हिस्सा होती है जिसमें हम काम करते हैं।
इसमें साफ दिखने वाली चीजें तो है ही, जैसे बदमाशी, बुलिंग, उत्पीड़न, हरासमेंट, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन।
लेकिन कुछ समस्याएं ज्यादा फैली हुई या छिपी हुई होती हैं, जैसे नौकरी की असुरक्षा, जॉब इनसिक्योरिटी।
हाँ, खासकर आजकल की गिग इकोनॉमी में, जैसे डिलीवरी वाले या ऐप बेस्ड टैक्सी चलाने वाले, उन्हें हमेशा एक डर लगा रहता है।
और फिर है काम का अर्थहीन लगना, मीनिंगलेसनेस, वो समाजशास्त्री डेविड ग्रेवर ने जिसे बुलशिट जॉब्स कहा था।
हाँ हाँ, ऐसी नौकरियां जो करने वाले को भी लगती हैं कि ये क्या बकवास है।
और लगातार दबाव, हमेशा उपलब्ध रहने की उम्मीद, इससे पैदा होने वाला तनाव और बर्नआउट, ये सब।
फाइनमैन का एक और जरूरी विचार है कि नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, जलन, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, तो क्या है?
ये अक्सर इस बात का संकेत हो सकती हैं कि संगठन में कुछ गलत है, जैसे अन्याय हो रहा है या लीडरशिप खराब है या ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा सकती।
तो इन भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए?
नहीं, उन्हें समझने और सही तरीके से व्यक्त करने का माहौल बनाना जरूरी है, क्योंकि जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी जिसे कहते हैं,
हाँ,
तभी वो रचनात्मक, मतलब क्रिएटिव और इनोवेटिव हो पाते हैं। भावनाओं को दबाने से ये सब खत्म हो जाता है।
वाह, ये तो काफी गहरी बातें हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश की मैसेजेस क्या निकलते हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी संदेश ये है कि काम का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहा है, ये समाज और इतिहास ने गढ़ा है।
हाँ, ये समझना जरूरी है, इससे हमें आज के काम के दबावों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिलती है। शायद काम ही सब कुछ नहीं है जिंदगी में।
बिल्कुल। दूसरा, हमारा शरीर और हमारी भावनाएं काम के केंद्र में है, ये कोई बाहरी चीज नहीं है।
और वो भावनात्मक श्रम असली मेहनत है।
हाँ, सोचिए उन टीचर्स या नर्सों के बारे में जिनका काम ही दूसरों की भावनाओं को संभालना है, ये कितना थकाने वाला हो सकता है। इसे पहचानना और महत्व देना जरूरी है।
तीसरा, काम की जगह शक्ति, नियंत्रण और असमानता का मैदान भी है। ये जानना जरूरी है कि दफ्तर की राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत चीज नहीं, बल्कि अक्सर व्यवस्था का हिस्सा होती है।
और लिंग आधारित असमानता इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे कुछ कामों को कम आंका जाता है।
चौथा, काम में दोहरापन है। ये हमें पहचान और मकसद दे सकता है, लेकिन ये तनाव, अलगाव और दुख का कारण भी बन सकता है। हमें से ज्यादातर लोग शायद इस कश्मकश को महसूस करते हैं।
हाँ, किताब हमें इस दोहरेपन को स्वीकार करने को कहती है।
और पांचवां, काम का स्याह पक्ष, तनाव, बदमाशी, असुरक्षा अक्सर सिस्टम की गड़बड़ी है, ना कि सिर्फ व्यक्ति की।
मतलब जब सिस्टम मुनाफे को लोगों से ऊपर रखता है तो ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं।
हाँ, ये हमें व्यक्तिगत कमियों से आगे बढ़कर व्यवस्था पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। जैसा फाइनमैन कहते हैं, जब कर्मचारियों से कहा जाता है कि अपनी भावनाओं को दरवाजे पर छोड़ाओ, तो असल में उनसे उनकी इंसानियत पीछे छोड़ने को कहा जा रहा होता है।
उफ, और इसी से जुड़ा छठा संदेश है कि सिर्फ आर्थिक पैमाने से, मतलब पैसा, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, इनसे काम को मापना अधूरा है।
हमें मानवीय पहलू भी देखने होंगे।
हाँ, जैसे काम का अर्थ क्या है, भावनात्मक लागत क्या है, अवैतनिक श्रम का मूल्य क्या है, ये सबको भी देखना होगा। और भावनात्मक समझदारी, इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करना जरूरी है, अपने और दूसरों के जज्बातों को समझना और संभालना सीखना।
ये तो बहुत सोचने वाली बातें हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या फायदा? कोई इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकता है?
देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर ये किताब हमें अपने काम के अनुभवों को एक नई नज़र से देखने में मदद करती है। अगर कोई अपने काम में तनाव महसूस कर रहा है या अकेलापन या बेकार,
हाँ,
तो ये समझने में मदद मिल सकती है कि ये शायद सिर्फ उसकी कमी नहीं बल्कि आधुनिक काम के ढांचे की वजह से है। इससे थोड़ी, मतलब, राहत मिल सकती है।
और शायद वो भावनात्मक श्रम को पहचानने से हम काम और निजी जिंदगी के बीच बेहतर सीमाएं बना पाएं।
बिल्कुल। और ये हमें उस ड्रीम जॉब के पीछे भागने की अंधी दौड़ पर भी सवाल उठाने को उकसाता है।
क्या जीवन में अर्थ और पहचान सिर्फ काम से ही मिलती है? शायद नहीं।
हाँ, परिवार, दोस्त, शौक, समाज सेवा, ये भी उतने ही जरूरी हैं।
अच्छा, और प्रबंधकों और लीडर्स के लिए, उनके लिए क्या है इसमें?
उनके लिए भी बड़े सबक हैं। सबसे पहला तो ये कि अपने कर्मचारियों को सिर्फ एक संसाधन, रिसोर्स न समझें, उन्हें पूरा इंसान माने।
उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव का भी ख्याल रखें।
हाँ, सिर्फ आंकड़ों के बजाय ये भी पूछें, क्या काम सार्थक लग रहा है, क्या काम का बोझ संभाला जा सकता है।
और वो जो अनकहा समझौता था, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसके प्रति ईमानदार रहें।
और लीडर्स ये भी सोच सकते हैं कि काम को थोड़ा बेहतर कैसे बनाया जाए, जैसे बहुत उबाऊ काम में थोड़ी वैरायटी लाना,
या जिन भूमिकाओं में ज्यादा भावनात्मक मेहनत लगती है उन्हें ज्यादा सपोर्ट देना। छोटी छोटी चीजें भी फर्क डाल सकती हैं।
सही कहा। और बड़े स्तर पर समाज और सरकार के लिए ये किताब मजबूत श्रम कानूनों, गिग वर्कर्स के लिए बेहतर सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जरूरत पर जोर देती है।
ये हमें काम की परिभाषा पर फिर से सोचने को कहती है। क्या घर के अवैतनिक काम को महत्व नहीं मिलना चाहिए?
बिल्कुल, जैसे बेहतर पेड पेरेंटल लीव या सस्ती चाइल्ड केयर सुविधाएं, और दफ्तर के माहौल को एक पब्लिक हेल्थ मुद्दा मानने की भी बात करती है।
तो इस सारी बातचीत के अंत में आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? मेरे लिए तो शायद ये एहसास कि काम कितना ज्यादा भावनात्मक, शारीरिक और हाँ राजनीतिक है। हम अक्सर इन पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में यही काम का असली ताना बाना है।
और मेरे लिए ये समझना कि काम को सिर्फ पैसों के चश्मे से देखना कितना नाकाफी है। फाइनमैन हमें एक ज्यादा मानवीय नजरिया अपनाने को कहते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि लोगों को ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाएं,
बल्कि ये कि काम को ज्यादा मानवीय कैसे बनाएं।
हाँ, ये कार्यस्थल पर भावनाओं को स्वीकार करने और भावनात्मक समझदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल देता है। शायद अगली बार जब हम में से कोई काम पर हो तो एक पल रुक कर सोचे, ये काम मेरे साथ क्या कर रहा है? सिर्फ मेरी जेब के साथ नहीं, बल्कि मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे रिश्तों के साथ। एक इंसान के तौर पर मुझ पर इसका क्या असर हो रहा है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।